una figlia,
mormuga con la
figlia.
यह बात पूछी गई कि भगवान को निरंतर जप कैसे हो, अर्थात भगवान को भजन निरंतर कैसे हो। भगवान का जो नाम है उसमें प्रेम होने से भगवान के नाम को प्रभाव जानने से और भगवान के में श्रद्धा प्रेम हुए तो फिर भगवान को भजन निरंतर हुए। संसार को निरंतर भजन क्यों हो रहे है कि संसार के मां प्रेम है, इसलिए तो भगवान के मां प्रेम होने से भगवान को निरंतर भजन हुए। अब यह बात है कि भगवान के मां प्रेम कैसे हुए कि भगवान को जो नाम है उसके गुण प्रभाव तत्व है समझे तो फिर नाम के मन स्वाभाविक ही प्रेम है, बल्कि भगवान को जो नाम है वो भगवान से भी बढ़ करके है। यह बात जब ध्यान में आवे तो भगवान के नाम के मन प्रेम हुए और निरंतर फिर को आपने जप हुए। तुलसीदास जी ने आपने तुलसी रामायण के बालकांड में कहा है कि भगवान को जो नाम है तो भगवान से भी बढ़ करके।
राम भजत हित नर तनु उधारी सई संकट किए साधु सुखारी।
राम जो है भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया और बहुत संकट सह करके जो श्रेष्ठ जो पुरुष है उनका उद्धार किया, बहुत परिश्रम संकट से करके श्रेष्ठ पुरुषों का उद्धार किया। तो बोले श्रेष्ठ जो पुरुष है, साधु जो पुरुष है, उनके उद्धार करने में कठिनाई क्या थी, पापियों को उद्धार करे तो उसमें कठिनाई हुए। तो नाम की ऐसी महिमा है जो पापियों का उद्धार कर।
नाम जपत नाम जपत बीनु यतन प्रयास भगत हो ही मुद मंगल वास।
नाम जपत माने नाम के जपने के साथ ही मनुष्य जैसो भगवान का भगत हो जाता है और आनंद और मंगल में उसका वास हो जाता है। बिना ही परिश्रम कोई आयास तो काम नहीं, भगवान तो बहुत परिश्रम सह करके साधुओं का श्रेष्ठ पुरुषों का उद्धार किया, किंतु भगवान के नाम के जप के प्रभाव से बिना ही प्रयत्न के और जापक जो है जपने वाला जो पुरुष है उसका आनंद मंगल के वहां वास हो जाता है। तो नाम की जो महिमा है भगवान से भी अधिक है, प्रकार से भगवान के नाम को जो प्रभाव समझ आ जावे तो फिर भगवान को नाम निरंतर होने लगे, इसके वास्ते कोई परिश्रम नहीं पड़े और मैंने छोड़ भी नहीं सके। क्योंकि जपने के समय के बीच के वहां प्रेम होने से और आनंद आने लगे, जितना प्रसन्नता और शांति मिले फिर वो जप छोड़ कैसे सके। और भी भगवान से भी बढ़ करके भगवान को नाम बतलाए।
राम एक ताप सत्य तारी नाम कोटि बहु कुमति सुधारी।
नाम जो है एक तपसी की क्रिया का उद्धार कर दिया तो कौन सी बड़ी बात। राम साक्षात अवतार लेकर के एक अहिल्या का उद्धार कर दिया तो वो तपस्वी की स्त्री थी उसका उद्धार कर दिया तो कौन सी बात है। नाम की महिमा देखो, करोड़ों की जो खराब मती थी उसका सुधार कर दिया, इससे ये बात सिद्ध हुई कि राम से भी बढ़ करके भगवान माने भगवान से भी बढ़ करके भगवान का जो नाम है वो है भगवान के नाम के जप के प्रभाव से भगवान उसके वश में हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी के वश में हो गए थे। सुमारी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखेउ रामू। पवन सुत हनुमान जी जो है भगवान के नाम को जप करके भगवान राम को अपने वश में कर लिया था। हनुमान जी तो भगवान के भक्त थे, क्या कोई पापी जो पुरुष है वे भगवान का नाम जपे तो उनका भी अपने उद्धार हो सकता है? बोले निश्चय। तुलसीदास जी कहते हैं अपर अजाभिर गज गणिकाऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। और भी अजामिल जैसे पापी और गणिका माने खानगी बेसा और गजन माने गज माने हाथी भगवान के नाम के प्रभाव से थी। पशु भी ऐसो ऐसे ऐसे पापी भी ऐसो तर गए, पापी और पशु भी तर गए। फिर हम लोगों का उद्धार हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है। और भी बड़ी भारी महिमा बालकांड के माँ गाई गई है। आखिर में तुलसीदास जी कहते हैं कवहूं कहां लगी नाम बधाई राम न सकहिं नाम गुण गाई। मैं भगवान के नाम की बढ़ाई यानी महिमा कहां तक कहूं जिनका नाम राम वे सुन भगवान भी अपने नाम की महिमा को सो नहीं गा सकते। भगवान से बढ़कर के भी भगवान का नाम है। इस प्रकार का विश्वास करने से भगवान के नाम के जप में प्रेम बढ़ता है और प्रेम होने से फिर भगवान का भजन छूटता नहीं। तो भगवान का भजन निरंतर करने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान से खुद से प्रार्थना करनी चाहिए, हम आप और कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस निरंतर जो है सो आपकी स्मृति बनी रहे, आपके नाम और रूप का साधन है सो निरंतर हो, यही बात हम आपसे चाहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान से याचना करें प्रार्थना करें तो भगवान की कृपा से निरंतर भगवान का भजन ध्यान हो सकता है और ये हमारे समझ में आ जावे और विश्वास हो जावे कि भगवान के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है तो फिर भगवान का नाम छूट ही कैसे सकता है। यदि भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा काम हम करते हैं तो हम उसी को बढ़कर समझते हैं, ये बात सिद्ध हो जाती है। नाम के जप के विषय के बीच के माँ विष्णु पुराण के छठे अंश में वेदव्यास जी महाराज ये कहते हैं कि सतयुग के माँ ध्यान करने से और त्रेता के माँ जप करने से द्वापर के बीच में पूजा करने से जिस परमात्मा की प्राप्ति हुआ करती थी उस परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में केवल नाम के जप से ही हो सके है। कल तद हरि कीर्तना। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भाई कलयुग के बीच के मां नाम जप के समान और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कलयुग केवल नाम है आधारा सुमरी सुमरी भव उतरु उपारा। कलयुग के बीच में केवल भगवान को जो नाम को जप है वो ही आधार है, इसलिए इसको सुमन करके पार होना चाहिए। और योग शास्त्र के माँ भी यह बात दिखलाई कि तस्य बात का परिणव है और तत् जपस तदर्थ भावनम। उस परमात्मा का नाम ओम है, उस नाम का जप है और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार के करने से सारे विघ्नों का नाश होकर के और समझो कि चेतन जो शुद्ध जो आत्मा उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये बात महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद में 27, 28 और 29 के सूत्र में ये बात कही है। गीता भी कहती है ओम इत्येका क्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनुश्रमण ये प्रयाति तदंग प्रयाति परमांग गति ओम, ये जो एक अक्षर है ये साक्षात ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ मैंने उस परमात्मा का नाम जो ओम है उसका जप करता हुआ, और भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान करता हुआ समरण करता हुआ जो देह को त्याग करके जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। और भी दसवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यज्ञानांग जपिए जोश में बहुत प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का नाम यज्ञ है, तो ऐसे बहुत से साधन बतलाए हैं, उन साधनों के मां जो नाम का जप है वो साक्षात मेरा स्वरूप है। और तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन है जितने यज्ञ हैं, जितने एक प्रकार से उपाय हैं, और ये तो साक्षात एक प्रकार से भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप ये मेरे जो नाम है, नाम और रूप में कोई ऐसा भेद नहीं है। और ध्यान नहीं लगे तो केवल भगवान के नाम के जब से भगवान में प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति हो जाए। तुम्हारी ये नाम है रूप बीनु देखे होत हृदय स्नेह विशेखे, भगवान को रूप देखे बिना ही भगवान के नाम का जो जप है उसके करने से भगवान के मां दृढ़ प्रेम हो जाता है, विशेष प्रेम हो जाता है, जिससे भगवान उसको आगे जाकर मिल जाते। तो सभी शास्त्रों के बीच के मां नाम की महिमा गाई है, तो इसमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास होने से फिर अपने आप ही प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाई ने पूछा कि भी भगवान को पहचाने कैसे, तो इसके लिए ये कहा जाता है भगवान को हम कैसे पहचाने, भगवान की कृपा से ही भगवान को पहचान सकते हैं, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सब कोई उसको नहीं पहचान सकते। गीता में भी ये बात कही है कि सब कोई भगवान को पहचान नहीं सकते, क्यों कि भगवान उस मूढ़ों के लिए अपना पर्दा डाल देते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यंग ना भी जानाती लोको मामज में बिम, नाहं प्रकाश सर्वस्य मैं सबको नहीं दिखता क्योंकि योग माया से मैं ढका हुआ रहता हूँ, जैसे बादलों से सूर्य ढका हुआ रहे तो इस प्रकार से नहीं दिखता। तो भगवान कहते हैं कि योग माया से मैं ढका हुआ रहता हूँ, इस प्रकार से सबको दिखता नहीं, इसलिए मुडों का समूह मुझको नहीं जानता। लोको मामद मध्यम मैं जो अज और अविनाशी हूँ ऐसे मुझ परमात्मा को मुड़ लो नहीं जानता। कई कई को जो ऐसे है कि नहीं जानने के कारण मेरा तिरस्कार कर देते हैं, अब जानती मांग मूढ़ा मांग सिंह तनुमाश्रितम परम भाव में जानन तो मम भूत महेश्वरम, भूत महेश्वरम मम भूतों का जो महान ईश्वर जो मैं हूँ ऐसे मुझे परमात्मा को मनुष्य शरीर के आश्रित जान करके मूढ़ों का समूह जो है सो मेरी अवज्ञा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अब जानती मांग मूढ़ा मुड़ा जो मुड़ समूह जो है मेरी अवज्ञा करते, क्योंकि परम भाव में जानो तो मेरा जो परम भाव है उसको जानते नहीं, कैसा जो मेरा परम भाव है कि लोग ईश्वरों का भी ईश्वर लोगों संसार में ईश्वरों का भी ईश्वर जो ऐसा जो मेरा परम भाव है उसे को नहीं जानते, और मनुष्य शरीर को धारण किए जो मैं हूँ ऐसे मुझको एक तुच्छ साधारण मनुष्य मान करके मेरा तिरस्कार कर देते, तो मतलब यह है कि मूढ़ लोग नहीं जानते। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो वही भगवान को जानता है, भगवान जिनको जानना चाहते हैं वही भगवान को जानता है। ये जान है जिन देह ही जनाही अरे जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ये जाने वही भगवान को जानते हैं जिनको भगवान जानना चाहते हैं, और जिनको भगवान जानना नहीं चाहते वे नहीं जान सकते। और जान करके भगवान को जानने वाला भगवान ही हो जाता है। दूसरा इसका यह अर्थ है कि हे भगवान वही आपको जान सकता है जिनके तुम हो, यानी तुमको जो अपना समझते हैं वे ही आपको जान सकते हैं, या जिनके तुम हो ऐसे जो एक पर तुम्हारे जो भक्त हैं वे ही तुम्हारे को जान सकते हैं, और जिनको आप जलाना चाहते हो वे ही आपको जान सकते हैं। तो भगवान जिनको जलाना चाहे वो ही जान सकता है, या यूं कहो कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जान सकता है। तो भगवान किसी को जाना चाहे किसी को नहीं चाहे या क्या बात है, बात यह है कि भगवान तो सब जन के समान भाव से ही व्यापक हैं, कोई उनके प्रिय प्रिय नहीं है, किंतु जो भगवान को जो भजते हैं उनको भगवान भजते हैं। ये सामंग प्रपदंते संस्कृते भजाम हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ, यह भगवान की प्रतिज्ञा गीता अध्याय 4:11 में भगवान ने यह बात कही है। यह कानून है कि तमोहन सर भूतेशु प्रिय ये भजन की तो मांग भक्त्या मई ते तेसु ताप हम, मैं सारे भूतों के मैं सम हूँ, न तो कोई मेरे प्रिय है और न कोई अप्रिय है, किंतु जो भक्ति करके मुझको जो भजते हैं वे मेरे हृदय में है, उनके हृदय में मैं हूँ। तो समान भाव से तो भगवान सब जगह है, और भजने वाले के मां विशेष रूप से है क्योंकि वो पात्र है। जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह के बीच के मां समान भाव से है, किंतु काट के बीच के मां समझो कि उसका कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता, आईने में शीशे में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शीशा और समझो काट दोनों ही पार्थिव वस्तु है, किंतु शीशा जो कांच है वो उज्जर है, उसके वहां सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और काश आदि के मन से नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जिनका हृदय कठोर काठ के समान है उसके हृदय के बीच के वहां भगवान एक प्रकार से नहीं प्रतीत होते, होते सब जगह समान भाव से रहते हुए, और जिनका हृदय शुद्ध आईने के समान है उसमें भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान उसमें साक्षात जो है प्रतीत होते। तो हम लोगों को अपने हृदय को उज्जवल बनाना चाहिए, जो अंतकरण के मां मल विक्षेप आवरण ये दोष भरे हुए हैं उन सबको मिटाना चाहिए। ये सारे के सारे दोष केवल भगवान के भजन से नाम जप के प्रभाव से मिट जाते हैं। बहुत से भाई कहते हैं हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं किंतु हमारा तो ये नहीं मिटा। तो बात यह है कि नाम का जो जप है वो दामी होना चाहिए, नाम का जप है श्रद्धा और प्रेम से जो होता है वो दामी होता है, श्रद्धा और प्रेम से होता है तो उसकी ये पहचान है, जो प्रेम से होगा तो निरंतर होगा, श्रद्धा से होगा तो आदर्श होगा। हम नाम का जप करते हैं आदर्श से नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, और प्रेम बिना निरंतर होना कठिन है। तो भगवान का जो भजन है वो निरंतर हो है और आदर पूर्वक हो है और निष्काम भाव से हो है तो उसका जल्दी प्रभाव पड़ता है, और साथ साथ के वहां जप के साथ में भगवान का ध्यान भी होता रहे तो फिर कहना ही क्या है, और ध्यान के साथ साथ में भगवान के गुण और प्रभाव की तरफ हमारा लक्ष्य चला जा तो और भी आनंद की बात। ये होने से भगवान के मां प्रेम हो जाता है और प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो सब जगह में व्यापक है ही, हम उसके पात्र नहीं इसलिए भगवान हमारे को नहीं दिख रहे हैं, और पात्र होने से तो भगवान उसी वक्त में प्रकट हो सकते हैं, और समझो कि पात्रता है प्रेम, जिसमें प्रेम है वह भगवान प्रकट होते हैं। भगवान केवल प्रेम ही देखते हैं सभी के लिए, भगवान ने यही कहा कि जानू एक प्रेम कर नाता, मेरे प्रेम का ही नाता है, और राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को केवल एक प्रेम ही प्यारो है, इसलिए राम के साथ हमको प्रेम करना चाहिए। प्रेम होने से भगवान भक्ति के प्रकट हो सकते हैं और भगवान को पहचान भी सकते हैं, प्रेमी पहचानता है भगवान को। भगवान में प्रेम होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें सभी कोई दोष नहीं है, इस प्रकार की जो यातना है कामना है वो निष्काम के तुल्य है। संसारिक फालतू वस्तु तो भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, वो तो मांगने वाले की मूर्खता है, बेसमझी है, वो तो भगवान को समझता नहीं है। शीघ्र ती शीघ्र जो है भगवान प्राप्ति कैसे हुए, तो इसका यह उत्तर होता है कि प्रेम से हुए। और प्रेम कैसे हुए कि भगवान के माँ विश्वास होने लगे कि भगवान के समान और कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर वो भगवान को कभी नहीं छोड़े, भगवान का भजन भी निरंतर हो और भगवान से अलग वो नहीं रहते। प्रेमी जो है वो अपने प्रेमास्पद से परमात्मा के लिए अलग नहीं रह सकता, जैसे जो मच्छी जो है वो जल से कभी अलग नहीं रह सकती, जल से अलग होने पर वो सपटाती है और देह के मां व्याकुल होकर के उसके प्राण तो रह नहीं। किसी ने पूछा कि मच्छी के मां भगवान के मां जैसे मच्छी का जल में प्रेम है, ऐसे भगवान के मां प्रेम कैसे हो? तो ये बात तो एक प्रकार से आप करें तो बहुत उत्तम है, जैसे मच्छी के जल ही प्राणों का आधार है, इस प्रकार से हम ये समझें कि हमारे प्राणों का आधार केवल भगवान ही है, तो फिर हम भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकेंगे। मच्छी तो फिर कुछ समय तक रह जाती है किंतु हम नहीं रह सकेंगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम कैसे हो कि हम नियम लेवें, जैसे पपैया का नियम है कि पपैया जो है चाहे गंगा जल भी क्यों नहीं हो वो भूमि पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, वो तो जो आकाश से जो जल बरसता है इसी का पान करता है। इसी प्रकार से हम ये एक नियम रखें कि भगवान के स्वाह हम किसी को भी नहीं भजें। पपैया जैसे स्वाति बूंद का ही यशु है, स्वाति बूंद का ही पान करता है और भी आकाश से बरसे हुए जल का पान कर लेता है, किंतु भूमि पर पड़ा हुआ जल छूता ही। इसी प्रकार से हम भगवान को छोड़ करके किसी पर प्रेम नहीं कर रहे, पर पपैया की जो हम नेम ले लेंगे कि हम भगवान के साथ दूसरी चीज को छुएंगे भी नहीं, दृष्टि उठा करके भी नहीं देखेंगे, ये अनंत भक्ति। भगवान के स्वर किसी में हमारी भक्ति न हुए और भगवान के विरह की व्याकुलता के मां हम तड़प रहे, हमको चैन नहीं पड़े, तो हमारा प्रेम भगवान के मां अतिशय होकर के और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यदि कहो कि मच्छी का जब जल में इतना प्रेम है उसके विरह में व्याकुल होकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है तो फिर आपने जल क्यों नहीं प्रकट होता? जल तो जड़ है, क्या प्रकट हो? भगवान तो जड़ नहीं, भगवान तो चेतन है। मच्छी जो है तो जल को चाहती है किंतु जल तो मच्छी को नहीं चाहता, कैसे बुलाकर? और जो भगवान को चाहता है भगवान भी उसको चाहते हैं, इसलिए भगवान के मां प्रेम होना स्वाभाविक ही है। और ये जीव है तो भगवान का अंश है, इस कारण से भगवान का इनका स्वाभाविक ही प्रेम होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है, आनंद की राशि है, और भगवान भी समझो कि सत्चित आनंद स्वरूप है, तो दोनों की एक ही जाति है। ये भगवान का अंश है, जैसे लड़का पिता का अंश होता है, जैसे ये जीव ईश्वर का अंश है, तो जैसे माता पिता का लड़के में स्वाभाविक ही प्रेम होता है, ईश्वर का तो स्वाभाविक प्रेम है ही। हम लोगों की कमी है तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। इसने पूछा कि संसार के बीच के मन जो है तीव्र बैराग्य शीघ्र कैसे हो, माने एक झटपट संसार के मन बैराग्य कैसे हो, और वो बैराग्य भी तीव्र। जब हम ये समझ ले कि यह जो संसार है दुख रूप है और नाशवान है, और हमारे जो लाखों जो करोड़ों जन्म हुए उसमें कारण है संसार की प्रीति, संसार के मां राग, संसार में जो राग है तो हमारे लिए घातक है, संसार के मां जो प्रीति है वो हमारे लिए महान एक बंधन है। जो आसक्ति है सब अनर्थों की मूल है, जितने जो समझो कि काम करो तो लोह मोह आदि जितने जो विकार होते हैं मूल में वो आसक्ति है, और आसक्ति के मूल में है समझो कि मैं भाव, और ये अज्ञान से और संसार के विषय भोगों के मन जो आसक्ति है वो भी सो अज्ञान से है, तो अज्ञान का नाश हो ज्ञान से, और उस ज्ञान की प्राप्ति महापुरुषों के संग से और श्रद्धा से, निष्काम कर्म योग के साधन से और ज्ञान के साधन से और ईश्वर की कृपा से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कृपा से ये सब बात होती। इसलिए हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए, ये जिससे एक प्रकार से यह संसार हमको दुख रूप और नाशवान प्रतीत हो। भगवान तो कहते हैं गीता के वहां कि यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनि एव ते आदंत अंत कोन्ते न ते सूरम ते बुधे, गीता अध्याय 5:22 के बीच के वहां आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के विषय भोग इनका इंद्रियों के साथ में जो संबंध है, विषयों के साथ में इंद्रियों का संबंध और उससे उत्पन्न हुआ जो सुख है उसको क्या संस्पर्श जब होगा, तो ये सब दुख के हेतु है। परिणाम में दुख ही दुख है और आदि अंत वाले नाशवान क्षण भंगुर है। इस प्रकार से भी विवेकी जो ज्ञानवान है वे समझते हैं, इस कारण से वे संसार के विषय भोगों के मान नहीं रमते, पर जो रमते हैं वे मूर्ख हैं। साक्षात सत्यनारायण परमात्मा को छोड़कर के, भगवान श्री राम श्री कृष्ण को छोड़कर के जो संसार के विषय भोगों के बीच के वहां रमता है वो तो एक समझो कि धूल ही चाहता है। तो दृष्टि जो पुरुष उनको धिक्कार देते हैं कि रे साक्षात भगवान के रहते हुए अगर तुम संसार के विषय भोगों के मां रमते हो तो ये तो बैराग करने की चीज है। जो बैराग होता है, मन जब शुद्ध होता है तो समझो कि एक ही उपदेश से बैराग हो जाता है क्षण मात्र के बीच के मां। जैसे राजा बाबू को गया था, समझो कि बंगाल के बीच के मां एक बड़े धनी आदमी समझो थे और कोई एक द्वारी दूध बेचने वाली उनके यहाँ दूध बेचा और पैसा मांगा, तो उनका जो मुनीम है उसने कहा कि ठहर बाजार में कोई और काम हो तो कर, तो वो बाजार का काम करके लौट कर आई और आकर के एक प्रकार से पैसा मांगा। उसने बंग भाषा में, बंगाल भाषा में कहा, बंग भाषा में कि जनाब यानी तुम ठहर थोड़ी बात। तो उसने ये उत्तर दिया कि बाबू आर बेला गांव, इसको अर्थ यह है कि और समय नहीं है, सूर्य भगवान अस्ताचल पर जा रहे हैं, मेरा गांव दूर है, तो इस वास्ते आप विलंब मत करो।